वन लेक्चर नंबर दो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् जम्जस्य जम्यदेशे जेन विहानेन जम्मि कालम्मि नादम् जिनेन नियदम् जम्मम् वा अहवमरणम् वा संतस्सतम् देशे तेन विहानेन तम् निकालम् मे कोशकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा एवम् जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपच्छाये सोषदिट्ठि शुद्धो जो शङ्कदिशोः कुदिट्ठि। जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु व्यवस्था बताई है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ये सभी द्रव्य गुण पर्यायों को साक्षात प्रत्यक्ष जानते हैं और उस कारण कार्य संबंधी जो उन्होंने हमें सिद्धांत बताए हैं, उसमें से पांच समवाय का विषय देखते हुए हम यहाँ 119 पर आए थे। 118 पर देखते हुए पंडित टोडरमल जी ने कल जो बात उठाई थी वो प्रश्न लेके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये लेक्चर नंबर 1 था, मैंने गलती से 2 बताया। ये मिला आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मिला। इन पांच समवायों का बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है, वह इस प्रकार कि यहाँ प्रश्न है कि यानी प्रश्न उठा के फिर उसकी चर्चा की है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर होता है। सो कहो क्या क्या लिया इसमें, काल भवितव्य निमित्त और पुरुषार्थ, तो इसमें से क्या सकते, क्योंकि स्वभाव तो स्वभाव है, उसमें तो कुछ पलटाने की बात है ही है। और फिर यही प्रश्न और आगे बढ़ाते हैं कि यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, यानी काल लब्धि आने पर या भवितव्य के अनुसार जो होना है वही होना है, तो कहते उपदेश क्यों देते, जो होना है और जब होना है तब होगा तो उपदेश क्यों दे रहे हैं। तो कहते पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, कोई उपाय करता है कोई नहीं कर सकता तो उसका क्या कार्य, हम चाहते हैं करना चाहते हैं नहीं होता उसका क्या कारण, उसका समाधान। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, ये अनेक कारण ये सभी पांच समवाय और निमित्त भी एक से भी अधिक हो सकते हैं। सो मोक्ष का उपाय बनता है, क्या कहा, मोक्ष का उपाय बनता है यानी कार्य हो रहा है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं और नहीं बनता वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते, यानी पुरुषार्थ को छोड़कर अन्य तीन कारणों की चर्चा, यानी वहाँ काल लब्धि भी होगी, वो होनहार भी होगी, निमित्त भी होगा, सब कुछ होगा। क्या कहा, जहाँ मोक्ष का उपाय बनता है यानी वो कर रहा है ना, तो आगे कहते जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है और जो कार्य हुआ वही होनहार है, यानी उसमें तो जीव का कुछ चलेगा नहीं ना। फिर पांच समवाय कौन से है, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है और निमित्त है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा कि काल लब्धि आने पर होनहार जैसी होनी है तब कार्य होगा कौन सा? मोक्ष के उपाय का। क्या कर्म का उपशम होने से होगा क्या पुरुषार्थ से होगा? ये प्रश्न है, स्वयं प्रश्न उठा के स्वयं उसका उत्तर दे रहे। तो कहते काल लब्धि और होनहार जो है वो क्या है? तो जिस काल में कार्य बनता है वही तो काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वह होनहार है। होनहार कहो या भवितव्य कहो, और निमित्त क्या है? कर्म के उपशमादि, उसमें तो आत्मा का कुछ चलता नहीं है, वो तो कर्म की अवस्था कर्म से होती है। अब क्या कहे, क्या बाकी रहा? पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो यह आत्मा का कार्य है, आत्मा ही स्वयं पुरुषार्थ करता है ना, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते। ये भी उपदेश की भाषा है। उपदेश तो ऐसा नहीं देंगे कि तुम काल लब्धि लाओ, उपदेश तो ऐसा नहीं देंगे कि तुम्हारा भवितव्य तुम बनाओ। उपदेश किसका करेंगे? पुरुषार्थ का। कि कौन सा पुरुषार्थ करने? मोक्ष का उपाय करने का पुरुषार्थ करने। जैसे हम हर पर्याय में अपना पुरुषार्थ चल रहा है, परंतु उसको हम मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। जिस पर्याय संबंधी पुरुषार्थ हो रहा है वह पर्याय तो हो ही रही है। राग द्वेष कर रहे तो पुरुषार्थ किसका चल रहा है? राग द्वेष का। तो सही पुरुषार्थ करे और कार्य न हो, ये हो नहीं सकता। हम अपनी कल्पना से कुछ पुरुषार्थ करना चाहते हैं, यानी कुछ करना चाहते हैं, और हम फल तो चाहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, मोक्ष प्रकट हो जाए। कौन सा कार्य करे? शुभभाव रूपी कार्य करके हमारा मोक्ष होगा ऐसा मानते हैं। व्रत आदि करने से मोक्ष मार्ग होगा ये मानते हैं। इनकी मान्यता में गलती है कि पुरुषार्थ करे कुछ अन्य चीज का और प्राप्त हो जाए मोक्ष, ये बात नहीं बनता। तो सही पुरुषार्थ की यहाँ उपदेश की भाषा जब होती है, ऐसा करो या वैसा करना चाहिए, तब वहाँ ये पांच समवाय को ख्याल में लेकर ही उपदेश दिया जाता है। वैसा सुनकर कौन पुरुषार्थ करेगा? कि जिसकी होनहार है और जिसकी काल लब्धि आई, बाकी के तो उसका विश्वास भी नहीं होगा, वो ऐसे भी काल देंगे। उसको सुनने को नहीं मिला था वो बात नहीं थी। हम जब कहते ना अनाज, जैसे हमने कितने बार सुना होगा, अनंत बार वो समोशरण में जाके आए तो समोशरण में कहाँ रुक गए? वहाँ तो कितनी कितनी वो सब समोशरण का वर्णन पढ़ेंगे, तो वो तो कितने सात सात कोट होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं, वो सारा वैभव बाहर होता है, देवकृत सारी बातें होती है। वहाँ भी वो नाटक चलते है, गायन चलते है, बाकी सब। यहाँ कोई जत्रा आती है, जुलूस होता है, इंडिया में आपने देखा होगा, तो उसके कितने दुकान लगते हैं, क्या क्या सब होता है ना सब, तो उसी में लोग घूमते रहते हैं, उसी में इंटरेस्ट होता है। अंदर जाए भी और वो उपदेश सुनकर नहीं सुना, उसने ग्रहण नहीं किया, तो भी क्या फायदा? तो ये पुरुषार्थ का ही उपदेश देने में आता है कि आपको समझे ना, स्वाध्याय करके तत्व सुनने चाहिए, तत्व का निर्णय करना चाहिए। जो स्वाध्याय कर रहा है उसको कहेंगे स्वाध्याय करने से, मात्र शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपनी आत्मसन्मुखता से कार्य होगा। परंतु जिसको आत्मा क्या है नहीं मालूम, आत्मा के सन्मुख हो जाओ कहने से कुछ नहीं होगा, तो पहले उसको कहेंगे क्या आत्मा क्या है, परचीज क्या है, स्वपर क्या है, सात तत्व क्या है, छह द्रव्य क्या है, उसके द्रव्य गुण पर्याय क्या है। जब इतना सब समझने लगेगा उसको सही, अभी ये हम यहाँ देख रहे हैं ना, कारण कार्य संबंधी सब सिद्धांत हम सीख रहे हैं, ये सीखने के बाद हमें अपनी ओर चलना चाहिए, स्वसन्मुखता से ये निर्णय पूर्वक स्वसन्मुखता करनी चाहिए। ऐसा हम उपदेश तो उसी का देंगे ना, चाहिए। चाहिए वाली भाषा कौन सी अनुयोग की है? चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग कहेगा ये सभी पांचों ही समय वहाँ स्वयं उपस्थित होते हैं। अब आगे देखेंगे, जो जीव जिनेन्द्र कथित उपदेशानुसार, ये कंडीशन है हो, चाहे जो अल्पमति अन्यमति कहे उसके उपदेशानुसार नहीं, क्योंकि सभी कहते हम मोक्ष दिला देंगे। तो कहते जिनेन्द्र कथित उपदेशान, एक कंडीशन, आवश्यक कंडीशन है, योग्य उपाय करेगा, ये भी कंडीशन डाली, योग्य उपाय। मन से चाहे जैसा उपाय करे और आपको वो फल मिले, ये नहीं हो सकता। तो योग्य उपाय करेगा, क्या है योग्य उपाय? तत्व पहले हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और उसका निर्णय करेंगे, और निर्णय पूर्वक आत्मसन्मुखता होगी, ये है योग्य उपाय। उसका कार्य अवश्य प्रकट होगा। कौन सा कार्य? समय दर्शन होगा, फिर वो तो आगे चलकर वो स्थिरता बढ़ेगी, उसके मुनि होगा, अरिहंत होगा, सिद्ध हो जाएगा। जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करेगा, है ना, उपाय मोक्ष का करेगा, उसे अन्य कारण तो स्वयमेव प्राप्त होते हैं। जो उपाय कर रहे उसका ही अर्थ, वो पुरुषार्थ उस जाति का कर रहा है ना, उसके ऐसे पुरुषार्थ के वो भाव भी हो रहे हैं, वो पर्याय भी हो रही है, उसका अर्थ क्या, उसकी काल लब्धि भी आई है, उसकी होनहार वैसी है। और जो उपाय नहीं करता उसे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होते। यानी अपने हाथ में कौन सी बात है? उपाय करने की। तो उपाय करेगा तो उसके कर्म के उपशमादि स्वयं में हो गए, उसको कुछ नहीं करना है। उसने जो सही उपाय करेगा तो उसकी काल लब्धि आई समझो, उसका वो भवितव्य भी वैसा होने योग्य है। तो उपदेश किसका देंगे? उपाय का। कौन सा? पुरुषार्थ का। कौन सा पुरुषार्थ? मोक्ष का सही उपाय। हाँ, क्योंकि सभी तो मोक्ष के लिए उपाय तो सभी कर रहे हैं, घर छोड़कर मुनि दीक्षा भी ले लेते हैं, मोक्ष के उपाय के लिए तो कर रहे हैं, ऐसे दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, परंतु वो सही उपाय नहीं, क्योंकि तत्व का निर्णय नहीं है और बाह्य व्रतादि अंगीकार करने से ही मैं मोक्ष मार्ग में जा रहा हूँ, ऐसी मान्यता है, गलत मान्यता, ये तो सही उपाय नहीं हो रहा है। कर तो रहे मोक्ष के लिए, परंतु सही निर्णय नहीं है, तो उनका ऐसा बेकार का चला जाता है। तो जो उपाय नहीं करता, कौन सा? सही उपाय नहीं करता, मोक्ष के लिए उपाय कर रहा है पर अपनी मति कल्पना से गलत उपाय कर रहा है, तो क्या उसका नहीं मिलता मोक्ष? तो जो उपाय नहीं करता उसे अन्य कारण भी प्राप्त नहीं होते, यानी उसका उपाय नहीं हो रहा है तो उसकी होनहार भी नहीं है, उसकी काल लब्धि भी नहीं है, हम सब कुछ उसमें लगा लेंगे, उसके कर्मों का उपशम भी नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि क्या कर रहा है? उसको शुभ भाव कर रहा है, बंद हो रहा है, यानी मिथ्या तो अनंतानुबंधी का तो उदय भी और बंद भी चलता रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उसका मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। तो वो कर्म का जो उपशम होने वाला वो निमित्त है, वो भी यहाँ नहीं पाया जाएगा। यहाँ अन्य चार समूहों का स्वीकार तो है, यानी जब पुरुषार्थ का उपदेश दिया जाता है, जीवों को उपदेश किसका करेंगे? तुम पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग का उद्यम करो, मोक्ष का उपाय करो, तो कहते हैं अन्य चार समवायों का वहाँ स्वीकार है। जो ऐसा उपदेश देता है उसको मालूम है कि इसके काल लब्धि आने पर उसके होनहार से पुरुषार्थ से कार्य होगा, वहाँ निमित्त भी हाजिर होगा कर्म में, परंतु कहते हैं उन अन्य चार समवायों को गौण रखकर पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया। ये तो वक्ता के अभिप्राय पर है कि एक कारण को मुख्य करे, दूसरे को गौण करे। जीवों को मोक्ष का योग्य पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी है। कारण कार्य व्यवस्था का ऐसा समीचीन, समीचीन समझ से यथार्थ सम्यक सच्चा सच्चा विवेचन, विवेचन ने कथन जिनागम ने किया हुआ है। कथन जिनागम का होने पर भी ऐसी व्यवस्था तो वस्तु में ही है। क्या कहा? कथन भले जिनेन्द्र भगवान ने किया है और वो हमारे आगम में लिखा है, परंतु ऐसी वस्तु की स्थिति है, वस्तु में व्यवस्था है, द्रव्य का ही ऐसा स्वरूप है कि ऐसा ही वो पांच समवाय स्वयमेव हाजिर रहते ही है। भगवान ने कहा इसलिए वो परिणमित नहीं हो रहे, द्रव्य इसी तरह से परिणमित हो रहे हैं और ये जिनागम में बताया गया। तो कहते ऐसी व्यवस्था तो वस्तु में ही है, अर्थात छह द्रव्यों में विद्यमान है। ये जो पांच समवाय संबंधी चर्चा चल रही है, तो प्रत्येक छह द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में परिणमित हो रहा है और उसकी प्रत्येक पर्याय उसमें ये सारे पांच समवाय लगेंगे। जो पर्याय होनी है, जब होनी है, वो सब सब लगाना है इसमें। आकाश द्रव्य भी, आकाश द्रव्य का जो वहाँ कुछ अवगाहन हेतु चल रहा है अन्य द्रव्य वो निमित्त पने से हम बता रहे, पर उसके अनंत गुण है कि नहीं, और उस अनंत गुणों का परिणमन भी हो रहा है, तो उसमें उसके अपने ये सारे पांच समवाय लग रहे, उसका स्वभाव ही है, उसकी काल लब्धि, उसका होना सब लगे उसमें। आप कहेंगे हर समय शुद्ध पर्याय तो हो रही है, परंतु वो शुद्ध पर्याय पर्टिकुलर एक समय में जो हो रही है उसकी बात हमें लगेगी। शुद्ध पर्यायों में भी अभी ये तो बहुत आगे की बात है, जिसको षड्गुण हानि वृद्धि कहते हैं, पर्यायों की जो प्रकट शक्ति है उसमें भी हीनाधिकता होती रहती है, मर्यादा स्वभाव रूप ही है सारा, तो ऐसे भी प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी वहाँ चलती रहती बात। नहीं, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय में अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, पूर्ण स्वभाव रूप जब भी प्रक्रिया प्रकट हो रही है उसमें भी अपनी अपनी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेदों का ये षड्गुण हानि वृद्धि में उसका परिणमन चलता रहता है। हत्येक प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, सेपरेट है, भिन्न है, एक से दूसरी अलग है, वैसे की वैसे भी हो सकती है, परंतु केवल ज्ञान गम्य इतने सूक्ष्म भी उसमें वेरिएशन है, ये मैं बताने का।
ये प्रश्न आप जरा सोचना कि विश्व में पर्याय जाति है या पांच समय जाति, विश्व में एक समय में मान लो पर्याय का नंबर वो जाति है या पांच समय उनका नंबर जाति है, पांच समय का तो यही है। बोलो बोलो,
सारी अच्छी है, पांच समय
एक पर्याय सीमा थवा माटे पांच समय नी
जरूर
तो
अनंत पर्याय
एने गुणिया पांच समय जो गणवाज पड़े
तो पर्याय वधारे, एक कार्य तथा पांच बे कार्य तथा पांच एना पांच इस रीते आप ऐसा हम गिनेंगे तो समवाय अधिक इसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक द्रव्य में कार्य तो होता ही है क्योंकि द्रव्य का स्वभाव तो पर्याय रूप परिणमन है ही है, तो उसका उसका वहाँ स्वभाव है, पांचवे समय उधर है तो उनका कार्य होते समय पांच समय लगेंगे,
तो अनंत गुण की अनंत पर
हो ना तीन काल की उसके अधिक और उसकी अधिक पांच समय है, तो अभी आपको थोड़ी क्लैरिटी आती कि भाई हरेक में क्या कहेंगे समय लगेंगे ही लगेंगे, सिर्फ जीव द्रव्य में नहीं हर द्रव्य में लगेंगे, तो ऐसा थोड़ा सा इक्वेशन डालेंगे तो थोड़ा सा सोच लगती है आपको, ऐसे हम सोचना।
देखो शास्त्र में यानी किसी एक की मुख्यता से कथन होता है, जब जीवों को उपदेश दिया जाता है तो पुरुषार्थ की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है, शास्त्र में कहीं कहीं ऐसा भी कथन आता है कि काल लब्धि की मुख्यता से कथन करना है तो काल लब्धि आने पर जीव को सम्य दर्शन होता है, ये शास्त्र का वचन है, ऐसा ही लिखा है काल लब्धि आने पर कर्म के उपदेश उपसमाधि होने से जीव को सम्य दर्शन होता है, तो क्या बिना पुरुषार्थ का हुआ, बिना होनहार के हुआ नहीं, तो कहते ये किसी चीज की मुख्यता बतानी है तो एक को मुख्य किया जाता है बाकी को गौण, ये मुख्य गौण की व्यवस्था है यहाँ पर, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में और जिनेन्द्र ये जो अपना जैन मत है उनमें आचार्यों का कथन हमेशा ही ये मुख्य गौण रूप से होता है, भले उन्होंने कहा यहाँ कि काल लब्धि आने पर जीव को सम्य दर्शन होता है, इसका अर्थ ऐसा नहीं कहना देखो देखो यहाँ केवल काल लब्धि को लिया, नहीं, ये लिखने वाले कौन है, जैन आचार्य है, उसका अर्थ क्या है तो उन्होंने किसी मुख्यता से बताया, नए का प्रयोग होता है, उनकी वाणी हमेशा नए से होती है, भले वहाँ नए का और उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, किस नए से बात नहीं लिखी है, जिनागम की है ना, बस ये नए से ही, ऐसा ही हमें स्वीकार करना है, क्योंकि आचार्य हर बार नहीं कहेंगे मैं इस नए से कह रहा हूँ, मैं इस नए से कह रहा हूँ, उस समय वहाँ भी सर्व पांचों समवायों का स्वीकार रहता है परंतु एक ही मुख्यता से कथन किया जाता है, शास्त्र के कथनों का योग्य अर्थ करने की कला अवगत नहीं होगी रीत पता नहीं होगी तो हमने देखा ना पांच प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। एक शब्द का अर्थ, कोई भाषा का विशेषज्ञ होगा संस्कृत प्राकृत का और उसका एकदम जैसा शब्द का अर्थ है वैसा निकालेगा तो उसको वो पूरा भाव भाषण होगा ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। हमें फिर तो एक होता है शब्दार्थ होता है और फिर हमने देखा था उसका नया अर्थ, नए से अर्थ करना नया अर्थ है। मतार्थ है ने जैन मत के अकॉर्डिंगली उसका क्या अर्थ होता है और अन्य मतों का कैसा निषेध होता है वो मतार्थ है। आगमार्थ है ने आगम की अपेक्षा उसका अर्थ क्या निकालना और फिर भावार्थ उसका मुझे क्या तात्पर्य निकालना, ये भावार्थ। तो आगम का ऐसा अर्थ करने की पद्धति ऐसी कला कहीं है, हमें अगर नहीं पता है अवगत ने हमें अगर मालूम नहीं हो तो क्या होता है अज्ञानी जीव शास्त्राभ्यास करके भी एकांत मिथ्या मतों का पोषण करता है। इसलिए प्राथमिक भूमिका में तो जीवों को पढ़ने की नहीं प्रेरणा दी, क्यों पढ़ेगा तो वही अर्थ लगाएगा जो उसकी कल्पना में पहले से ही सेट हुआ है। यहाँ तो जैसा यथार्थ अर्थ उसमें से निकालना चाहिए वो बात आवश्यक है समझना, और इसलिए हमेशा सुनने की मुख्यता है। उपदेश को सुनने की मुख्यता क्यों है, क्योंकि जो वक्ता और श्रोता है तो श्रोता के मुंह पर भी उसको पता चलता है कि इसने कितना ग्रहण किया है, उसको समझ में आया है कि नहीं है, ये मुद्रा पर से भी पता चलता है। इसके कोई प्रश्न है तो तत्काल उसका निराकरण किया जाता है, दृष्टांत दिया जाता है, उसको नए से बताया जाता है। परंतु पढ़ने में वो बात नहीं, जो कुछ उसके वो ख्याल में नहीं आता क्योंकि उसका वो सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता है।
और जो जिनेंद्र भगवान के शिक्षण को जानता है ये पांच साल के द्वारा समझता है वो समय का अपना इसमें अंतर होगा कि
अभी चलता है ना मुंबई वगैरह में तो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चलते जाएंगे हैं। और पढ़ाने वाले तो अन्य मत ही होते बहुत सारे यहाँ क्या है, मैं जहाँ का मुझे मालूम है वहाँ की बात मैं बता रही हूँ। तो वहाँ उनको तो ये नयों का वगैरह तो अर्थ मालूम नहीं है, उसका अभ्यास ही नहीं है, तो वो शब्द का अर्थ करके पढ़ाएंगे। वहाँ हमने देखे हमारे यहाँ भी पढ़ने को आते हैं, वहाँ की पीएचडी करके आते हैं और उन्हें कुछ द्रव्य गुण पर्याय तक का वो सही भाव वासन नहीं होता। फिर जब आते तो पढ़ने लगते अपने यहाँ एक दो ने ऐसे कितने ही लोग हमने देखे, उन्हें क्या लगता है हमने पीएचडी प्राप्त की, हम इतना जिनागम को जानते हैं, हमने इतनी परीक्षाएं दी है, मगर पूरा जीरो है क्या, हमारे मर्म ही नहीं समझ पाते। यहाँ क्या कहा देखो यही है, और ये मर्म ज्ञानियों के हृदय में होता है और वो वाणी से प्रकट होता है। हमेशा देखना में ज्ञानी को क्यों लिया है मुख्य, क्योंकि उन्हीं से हो सकता है कि पूर्व भोग की अभी जैसे श्रीमद जैसे वो पूर्व भोग की देखना उनको प्राप्त थी तो इस भाव में कार्यकारी हो गई है, ऐसे कोई विरले को हो भी सकते हैं। परंतु यहाँ तो उपदेश सुनने की मुख्यता है। ये लास्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ भ्रांति होती है, जब तक गुणस्थानों का अभ्यास नहीं था तो समझते थे हम शुद्ध बुद्ध तो चार चार घंटे चार पांच मित्र थे वो तो रूम में ऐसे बंद कमरे में मुनि जैसा वो निर्वस्त होकर वो करते थे कि मानते थे कि हम इतने घंटे के लिए मुनि हैं, ऐसा होता नहीं। उसके लिए जब उनका गुणस्थानों का अभ्यास हुआ तब सही बात ख्याल में आई। इसलिए मूल समयसार में गुणस्थान की कहां चर्चा नहीं है, इन्होंने नाटक समयसार जो आत्मख्याति ग्रंथ का है उन्होंने उसका अपने पदों में सरल भाषा में किया है, अंत में जाकर उन्हें गुणस्थान के अधिकार देते हैं उसमें उसकी चर्चा। बस सही है, क्योंकि आत्मख्याति में था नहीं तो उन्होंने अभ्यास करके फिर उसमें डाला। देखो पांच समवायों की चर्चा से द्रव्यों की स्वतंत्रता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रता से अपना कार्य करता है, पर्यायों की स्वतंत्रता और सहजता। सहजता ने वहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, खींचा तानी नहीं, वो तो सहज हो ही रही और वही होगी। एवं निश्चित अर्थात नियत यानी डेफिनेट कारण कार्य व्यवस्था तुम्हारे ख्याल में आई होगी। अभी हमारे ये पांच समवाय संबंधी ये विषय यहाँ समाप्त होता है। द्रव्य में ही कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियाँ भी है। अभी तक हमने क्या क्या देखे, तो उपादान निमित्त देखे, षटकारक भी देखे, यहाँ पांच समवाय भी देखे, अभी अन्य भी अनेक शक्तियाँ है कि उसी में वो ऑटोमेटिक व्यवस्था कैसी है द्रव्य में, उसमें से कुछ शक्तियों का यहाँ हम यहाँ विवेचन देखेंगे। ये 11 नंबर का पत्रांक बापू जी, शुरुआत से पांच समवायों की चर्चा पढ़कर मानसिक अशांति दूर हुई, धैर्य प्राप्त हुआ, ऐसा तुम दोनों ने अपने अपने तरीके से बताया। बेटियों लौकिक समस्याएं तो चलती ही रहती है, छोटी बड़ी आपत्तियां आती है, उस समय यदि तत्व ज्ञान की नींव नहीं होगी तो मन अत्यंत आंदोलित हो उठता है, क्योंकि बारंबार उसी के बारे में, उस कोई संयोगों के बारे में हम सोचते रहते हैं, मन का संतुलन हम खो बैठते हैं, प्राप्त परिस्थिति में से बाहर निकलने का मार्ग तो दिखता नहीं और उस कारण निराश होकर शोक क्रोध आदि के संकलेश परिणाम होते रहते हैं। इसको कहते संकलेश परिणाम, अंदर से तिलमिला उठता है, इसमें से मुझे बाहर पढ़ना है पर कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे संकलेश परिणाम। ये संकलेश परिणाम क्यों होते हैं, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ है ना, जानता नहीं है। इन संकलेश परिणामों के कारण ऐसे कर्मों का बंध हो जाता है कि उसके फलस्वरूप यानी उसके उदय में भविष्य में भी इसी तरह के प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते। अन्य कोई जीव, अब ये तो प्रतिकूलता की बात हुई, तो अनुकूलता हो तो अच्छा है ना, संकलेश परिणाम तो नहीं हो गया। तो कहते अन्य कोई जीव अनुकूल संयोगों में हर्षित होता है, उसका भोक्ता बुद्धि रूप अज्ञान कायम रहता है, जैसे देव में चला गया तो वहाँ तो कोई बात नहीं है संकलेश की, वहाँ तो विषयों को भोगने में लगते है। लोभ मान हास्य आदि परिणामों द्वारा भी उसका कर्म बंध तो होता ही रहता है, और ऐसा नहीं कि देव में गया तो लगातार शुभ भाव करता है, ये शुभ अशुभ शुभ अशुभ अंतर्मूर्त में पलटते रहते, सब में संकलेश विशुद्धि कहते हैं। अब उसमें तीव्र हो गए मंद हो गए, परंतु वो पलटते अवश्य है। उसमें से छूटने का एकमेव मार्ग तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन ही है। मेजोरिटी देव कौन से, मैक्सिमम नंबर ज्योतिषी देव, उससे नीचे भी अंतर है, उससे नीचे भवनवासी है और वो सौधर्मा वगैरह उससे नीचे, पर इतने यानी मेजोरिटी पूरा आसम पूरे देव लोगों में पूरा मेजोरिटी संख्या तो इनमें है, और इनमें से कितने ही तो एक में चले जाते। देखो जिनेन्द्र कथित आगम द्वारा, ये फिर जिनेन्द्र कथित की कंडीशन लगाई, वस्तु स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हुए छह द्रव्यों का जो परिणमन होता है, कार्य होता है, उसके कारणों की हम मीमांसा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और वह स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है। क्या कहा, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, दूसरी बात क्या है, स्वाधीनता से अपना परिणमन करता है, अपना भी करे और थोड़ा दूसरा का भी करे ना, स्वयं का कार्य करता है, दूसरे किसी का भी कार्य नहीं कर सकता। क्या कहा, अनेकांत किसको कहेंगे, अपना ही कार्य करता है, दूसरे का कर ही नहीं सकता, यानी अपना भी करे और दूसरा भी करे, दूसरे का भी करे, इसको अनेकांत नहीं कहते। अनेकांत लोगों ने अनेकांत का उल्टा अर्थ लगाते हैं सब लोग। ये भी सच्चा, वो भी सच्चा, अपना भी कार्य करे और थोड़ा थोड़ा जाते जाते इसका भी करे, इसको अनेकांत नहीं कहा, ये तो मिथ्या है। अपना ही कार्य कर सकता है, दूसरे का कर ही नहीं सकता, ऐसा जब हम कहेंगे तो ये सच्चा। संपूर्ण चराचर, चराचर ने जड़ चेतन सब कुछ आ गए इसमें। चराचर यानी जीव अजीव सब कुछ आ गए। संपूर्ण चराचर विश्व का कार्य करने वाला कोई ईश्वर है, यह मान्यता बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसी अन्य मतियों की मान्यता यही है कि विश्व में जो कुछ है उसका कर्ता कौन है? ईश्वर। वो कहते भी है ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं है। क्या 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 गलती हुई इसमें? इस वाक्य में क्या गलती? ईश्वर की इच्छा के बिना, हाँ, ईश्वर ने इच्छा की, ये सबसे पहली गलती। क्योंकि वो वितराग तो है ही नहीं, उसकी इच्छा हुई। हाँ, तो कोई किसी का करता नहीं है, तो पत्ता भी नहीं हिलता है। अभी उसको पूरे विश्व में क्या क्या हिलता है, क्या क्या होता है, वो परिणाम मैंने, वो कितना दुखी हुआ। क्यों भाई देन? हम सुबह से शाम तक ये घर का काम करते करते कितने थक जाते, और वो पूरी दुनिया का काम करने क्या हो जाएगा? ऑनररी सुपर सर्वेंट कौन? भगवान। पूरी दुनिया का कार्य करे, तो कहते ये मान्यता ही गलत है। प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य संबंधी अनेक शक्तियां हैं। अभी तक तो हमने उपादान और वो सब पांच समवाय देखे हैं, षटकारक देखे, षटकारक भी देखे ना विलक्षण, वो प्रत्येक द्रव्य में। यहाँ तो अन्य भी कुछ शक्तियां उसको देखेंगे हम। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से युक्त है। जैन तत्व परिचय पुस्तक में हमने सामान्य गुणों की चर्चा में वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुणों का सविस्तार विवेचन किया था। याद है कि भूल गए? वस्तुत्व गुण क्या बताता है? अपनी अपनी प्रयोजनभूत कार्य करता है, अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, उसी को अर्थ क्रिया कारित्व का। आपने सुना होगा ठीक है ना? तो ये प्रत्येक द्रव्य में वस्तुत्व नाम का गुण है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है, ये गुण ने उसका स्वभाव ऐसा है जिसके कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य अर्थात परिणमन करता है। यानी उसका अपना जो कोई निश्चित कार्य है उसी को करता है, अपने कार्य को ही करता है। द्रव्य में उत्पाद व्यय होते रहते हैं, यानी हर ये तो अपना अपना कार्य करता है, इतनी बात यहाँ बताई। द्रव्य के स्वभाव को ही उसका वस्तुत्व गुण कहते हैं। द्रव्य का एक स्वभाव ऐसा भी है, देखो स्वभाव है ना, जैसे एक हीरे में अनेक पहलू होते हैं, जैसे द्रव्य में उसके स्वभाव के अनेक पहलू है, उसको हम गुण कहेंगे। तो एक स्वभाव ऐसा भी है जिसके कारण यह परिणमन, अपना अपना परिणमन क्यों हो रहा है? वस्तुत्व गुण के कारण। और ये जो होने वाला परिणमन वो कैसा चले? निरंतर, यानी प्रति समय, यानी थोड़ा अभी कार्य हो गया, अभी शांति से बैठे रहे, फिर जब कभी भी कार्य, ऐसा नहीं, हर समय हर समय हर समय, तो निरंतर चलता ही रहता है। द्रव्य अपना स्वरूप कायम रखते हुए, क्या कहा? अपना स्वरूप कायम रखते हुए निरंतर परिणाम करता है, वो टिकते हुए निरंतर परिणाम करता है। यानी उसका स्वरूप नहीं बदला है, परंतु निरंतर नई नई कोई न कोई अवस्था, कोई न कोई अवस्था चलती रहती है। द्रव्य के स्वभाव को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अभी तक हमने दो शक्तियां देखी ना, कौन सी दो? वस्तुत्व और द्रव्यत्व। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। सुनिए कही, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व कहाँ सुना? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, ये तत्वार सूत्र में सूत्र है। हाँ, सब जगह ये तो उसका सब जगह रेफरेंस आएगा। हाँ, तो उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व शक्ति है, इसकी शक्ति के कारण क्या होता है वो देखेंगे कि द्रव्य उत्पाद व्यय और ध्रुवता से युक्त है। इस शक्ति के कारण से प्रत्येक समय में पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय वर्तमान पर्याय का उत्पाद होता है और साथ साथ द्रव्य की ध्रुवता कायम टिकती है। द्रव्य नित्य रहते हुए हर समय परिणमन कर रहा है, यानी नित्यता भी द्रव्य का ही स्वभाव है और परिणमनशीलता यानी अनित्यता भी द्रव्य का ही स्वभाव है। तो ये परिणमनशीलता यानी अनित्यता ये नित्य है कि अनित्य है हमको नहीं? ये अनित्यता जो है द्रव्य का स्वभाव है ना, नित्यता भी द्रव्य का स्वभाव है। हाँ, पर्याय के हिसाब से, पर वो अनित्यता नित्य है कि अनित्य है? अनित्यता, हाँ, क्योंकि परिणमनशीलता चल रही ना हर समय, यानी नित्यता जैसा द्रव्य का स्वभाव है वो अनित्यता यानी परिणमनशीलता भी द्रव्य का स्वभाव है। और स्वभाव उसी को कहते जो कायम टिकता है, यानी कायम नित्य रहते हुए कायम परिणम ना, ये द्रव्य का स्वभाव। उसका परिणमन डूब जाए तो ये द्रव्य का स्वभाव नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल है, हर समय हो रहा है, उसका परिणमन कभी रुकेगा नहीं। और दो द्रव्यों मिलकर एक परिणमन करे ऐसा कभी होगा नहीं, एक द्रव्य दो द्रव्यों का मिलकर परिणमन करे ऐसा कभी नहीं होगा। तो कितनी बिल्कुल जिसका जिसका डिपार्टमेंट सेपरेट है ना, और हर एक द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है। किसी एक द्रव्य अरे अभी मेरा परिणमन होना है, किसी अन्य द्रव्य मुझे आके हेल्प करे तो होगा, ऐसा है ही नहीं। तो क्या ये होता है स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता से परिणमन करना, तो प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ही है। ये बारंबार स्वतंत्रता स्वाधीनता और सहजता ऐसे शब्द आए, यानी इसके लिए कुछ किसी की राह देखना पड़े या कोई आवे तो हमारा कार्य हो गया, ऐसी बात ही नहीं। निमित्त नहीं मिला इसलिए किसी द्रव्य का कार्य रुक गया हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। निमित्त तो होता ही है और ये अनंत कार्य हो रहे हैं और अन्य अनंत द्रव्य अपने अपने में परिणमन कर रहे हैं, तो किसी अन्य कार्य में किसी अन्य द्रव्य का निमित्त होते हुए दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो लाना पड़े, वो वहाँ हो तो हटाना पड़े, ऐसी कोई चिंता ही नहीं है। जिस समय जो पर्याय होनी है अर्थात जो होनहार है जो भवितव्य है, उस प्रकार का निमित्त भी सहज ही उपलब्ध होता है। ये सहजता का ज्ञान हो जाए ना तो पूरी पूरा विश्व हमें सहज रूप से ख्याल में आता है, बिल्कुल निराकुलता भाषित हो जाए कि प्रत्येक द्रव्य अपने में सहज रूप से अपने अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है। अभी ना कुछ करना है, ना किसी को बदलना है, ना कुछ करना है, कि हम तो अपने विकल्पों हम कर भी नहीं सकते हैं। विकल्प में बारंबार हम उसी में जैसे है ना पड़े रहते, विकल्पों के जाल में हम फंसे हुए रहते और हम स्वयं दुखी दुखी होते हैं। अपने ही विकल्पों से हम ही स्वयं दुखी होते रहते हैं। अभी इस पुस्तक में सहज शब्द कितने बार आए देखो आप, ये होता ही सहज है ही वस्तु व्यवस्था सहज। निमित्त आया इसलिए कार्य हुआ ऐसा भी नहीं, और निमित्त के बिना ही कार्य हुआ ऐसा भी नहीं। क्या कहा? क्योंकि जो कार्य होता है उसमें दोनों ही कारण होते ही है, उपादान और निमित्त। निमित्त कार्य में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है, परंतु उसकी उपस्थिति है। तो हमने तो बिना ही निमित्त का कार्य ऐसा है नहीं, होता तो उपादान में ही होता है और वहाँ कहेंगे निमित्त के बिना इसने अपने आप किया, परंतु वहाँ निमित्त की उपस्थिति होती ही है। कोई क्या मानते हैं, मुझे बुखार आया मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा तो मैंने निमित्त को माना, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बिना मेडिसिन ठीक होना है या मेडिसिन नहीं लेना है उसको वर्स्ट होना है, जो कुछ वो निश्चित तो है, परंतु मेडिसिन खाते हुए इससे कार्य नहीं हो रहा है ऐसी मान्यता होगी तो सच्ची मान्यता। या हो सकता है कि उसके विकल्प नहीं आ रहे मेडिसिन खाने के, और ये तो शरीर तो मुनिराज है, कितने ही मुनिराजों को ऐसी विद्या होती है कि शरीर में कोई कोढ़ जैसी बीमारी हो और उनके जो सूख हैला वो लगाए तो वो दूर हो जाए, ऐसी उनकी विद्या होती है। कभी विकल्प ही नहीं आता है, अरे ये तो शरीर का परिणाम है, शरीर में चल रहा है, उसको ठीक करने का भी विकल्प नहीं आता है, क्योंकि शरीर से भिन्न अनुभव चल रहा है हर समय उनका, प्रतीति हर समय वर्त रही है ना उनकी। तो ये जो मैं तो जीव हूँ वो अपने में ही मग्न है, मस्त है, तो उसका परिणाम बदलने की चिंता नहीं रहती उनको। अब यहाँ विंटर में बाहर के पतझड़ हो जाती है, पीले पीले होते हैं कलर उसके, निकल जाते हैं पीले होते हैं, तो उसको रंग देने का विकल्प आता है क्या आपको? क्यों नहीं आता? तो वैसा ये शरीर का हो रहा है ना, शरीर में यहाँ कुछ झुर्रियाँ आ जाए, बाल झड़ गए, कुछ रोग आ जाए, तो कहते जिसने आत्मा का अनुभव किया है उसको उसके प्रति कोई विकल्प नहीं है, ये इसका इसका परिणाम नहीं, उसका मेरे से भिन्न ही उसका कुछ भी परिणाम हो जाए मुझे क्या उसको, इतनी उनकी क्योंकि अनुभव से एक बात है, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं की उसने अपने पर, ख्याल में कोई जबरदस्ती कर रहा है कि मुझे मुझे नहीं करना, और कोई क्या है कि उसने अब अनुभव कर लिया। तो निमित्त के बिना ही कार्य ऐसा भी नहीं है, आगे कल निमित्त की सहज उपस्थिति रहना, क्या कहा है? सहज उपस्थिति रहना, तो सहज सुंदर नैसर्गिक नियम है, ऐसी ही कारण कार्य की स्वतंत्रता और सहजता है। देखो एक पैराग्राफ में चार बार सहज आया, ऐसी सहजता होती है, कारण कार्य बिल्कुल व्यवस्था, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, प्रत्येक द्रव्य में ऐसी अनेक शक्तियां हैं कि जो कारण रूप से कार्य करने में समर्थ है, मैंने प्रत्येक द्रव्य में कार्य संबंधी कारण रूप शक्तियां बहुत सारी है। अभी उसमें से कुछ यहाँ शक्तियों की हम बात करते हैं, क्रिया शक्ति, ये जो आत्मा की 47 शक्ति है ना, उसमें से यहाँ कितनी शक्तियों का वर्णन किया है, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व भी है, अब यहाँ हम देखने जा रहे हैं वो क्रिया शक्ति भी है, ये भाव शक्ति क्रिया शक्ति आदि जो है ना आगे चलकर इस उसमें, हाँ वो सब लेंगे अभी यहाँ पर। तो ये क्रिया शक्ति क्या है कि क्रिया शक्ति के कारण से द्रव्य अपने षटकारक के अनुसार परिणमन करता है, यानी अपने षटकारक के अनुसार परिणमन करना ऐसे एक द्रव्य में शक्ति है, और वो प्रत्येक द्रव्य में अपनी शक्ति है, और प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने षटकारक है, तो प्रत्येक द्रव्य अपने षटकारक से अपने पर्याय रूप से परिणमन करता ही है। अब ये जो षटकारक के भी 6 गुण अलग अलग, ये भी शक्तियां हैं, तो द्रव्य में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण नाम की शक्तियां हैं, इन्हें षटकारक भी कहते हैं, यानी वो क्रिया शक्ति तो अलग और ये षटकारक की 6 शक्तियां भी अलग, वो प्रत्येक द्रव्य में है। वैसे तो वो सामान्य गुण कहेंगे हम, हमने आत्मा की 47 शक्तियों में इसका वर्णन सुना है, देखा है, परंतु ये तो प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है, हमने देखा प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रता से स्वाधीनता से अपने पर्याय का कर्ता है, वो कर्ता कारक, ये हमने देखा ना, यहाँ षटकार की चर्चा हुई अपनी, इनका स्वरूप एवं कार्य हमने विस्तार से देखा है। द्रव्य में एक परिणाम शक्ति है, द्रव्य का ही ऐसा स्वभाव है कि वह अपने स्वभाव के कारण ही नित्य ध्रुव रूप रही रहता है और अपने स्वभाव से ही व्यय और उत्पाद ही करता है। क्या कहा? ये उत्पाद व्यय ध्रुवत्व वाली शक्ति तो हमने देखी, इस शक्ति का नाम क्या है? परिणाम शक्ति। ये परिणाम शक्ति कैसा स्वभाव है कि अपने स्वभाव के कारण ही नित्य ध्रुव रूप भी रहता है और अपने स्वभाव के कारण ही व्यय और उत्पाद रूप, कौन से? पूर्व पर्याय के व्यय रूप और नए पर्याय के उत्पाद रूप, वो भी करता है। उत्पाद, व्यय और ध्रुवता, इन तीनों को मिलाकर एक अस्तित्व में पना द्रव्य का स्वभाव है, उसको एक अस्तित्व में कहा। इन तीनों को मिलाकर है, वो अलग अलग नहीं, ये उत्पाद अलग, व्यय अलग, ध्रुवता अलग नहीं, तीनों को मिलकर ऐसे जो एक अस्तित्व में है। हमने भी देखा सत द्रव्य लक्षण अस्तित्व पना, वो सत कैसा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो द्रव्य का अपना एक अस्तित्व कैसा है कि कायम रहते हुए पूर्व पर्याय का व्यय और नए पर्याय का उत्पाद रूप परिणमन हो रहा है, और ये तीनों पर के यानी निमित्त के कारण नहीं है, परंतु अपने स्वभाव के कारण। कि उत्पाद व्यय और कायम रहना किसी अन्य के कारण नहीं है। द्रव्य कायम टिका हुआ रहता है तो कोई ईश्वर कोई विष्णु वगैरह उसका रक्षण करता है, इसलिए वो टिक रहा है क्या? वो द्रव्य अपने स्वभाव से ही टिक रहा है, अपने स्वभाव से ही पूर्व पर्याय का व्यय करता है और अपने स्वभाव से ही नए पर्याय का उत्पाद करता है, इसलिए यहाँ उसके निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं है। तो ये परिणाम शक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं, द्रव्य में अकार्य कारणत्व शक्ति है। कौन सी शक्ति अभी तक हमने देखी? देखो पहले हमने वस्तुत्व देखा, द्रव्यत्व देखा, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति देखी, और उसके बाद हमने ये भी देखी थी कि क्रिया शक्ति देखी, षटकारक के षटकारक कर्ता कर्म क्रिया वो सब षटकारक की शक्तियाँ देखी, परिणाम शक्ति भी देखी, और अभी हम देख रहे हैं अकार्य कारणत्व शक्ति। ये अकार्य कारणत्व शब्द कैसे तैयार हुआ? अकार्य अकारण, क्या कहा? किसी का कार्य नहीं, किसी का कारण नहीं, किसी का है परद्रव्य। अपने तो पर्याय का कारण है वो। तो देखो द्रव्य अन्य का कार्य नहीं, यानी द्रव्य तो अनादि से, वो तो कार्य है ही नहीं और कारण भी नहीं है, परंतु अन्य पर्याय का भी, अन्य द्रव्य का तो कार्य भी नहीं है, यानी अन्य किसी ने द्रव्य को उत्पन्न नहीं किया है और वो भी अन्य किसी को द्रव्य को तो उत्पन्न नहीं करने वाला है, परंतु अन्य पर्याय का तो उत्पन्न करता है कि नहीं करता? तो कहते नहीं, स्वयं अपने पर्याय का करता है, पर के पर्याय का करता नहीं। गुण भी अन्य का कारण नहीं तथा कार्य भी नहीं। उसी तरह अभी द्रव्य पर घटित किया, गुण पर भी घटित किया, तो कहते प्रत्येक पर्याय भी अन्य किसी का कारण भी नहीं और कार्य भी नहीं। द्रव्य कारण कार्य नहीं है, कारण नहीं है, अन्य का गुण भी अन्य का कारण और कार्य नहीं है, पर्याय भी अन्य का कार्य नहीं है और कारण नहीं है, अपने में ही सब कुछ है। यह द्रव्य का स्वभाव होने से द्रव्य के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय स्वयं का ही कारण है। अब ये द्रव्य और गुण से भी पर्याय को स्वतंत्र बताया है, क्यों? वो तो बिल्कुल स्वतंत्रता से वो हो रही है, इसलिए तो स्वयं का ही कारण है और स्वयं का ही कार्य है। हमने ये पर्याय के षटकारक में भी देखा था, अभी अन्य शक्ति के रूप में बता रहे हैं। उसे द्रव्य का कार्य कहना भी उपचार है। देखो हम कह रहे द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहा है, द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहा है, परंतु यहाँ तो पर्याय की भी स्वतंत्रता बतानी है, क्योंकि वही पर्याय उसी समय वहीं पर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, तो पर्याय स्वयं का ही करता है, स्वयं ही अपना ही वो कार्य करता है। इतना बताने के लिए ये कहते हैं कि द्रव्य को उसका द्रव्य का यह कार्य है, पर्याय द्रव्य का कार्य है, अपने ही द्रव्य का कार्य है, ये कहना भी क्या है? उपचार है। अपेक्षा से समझना हो, प्रत्येक पर्याय निज सामर्थ्य से ही लगाया स्वतंत्र प्रकट होती है, वह अन्य का कारण नहीं तथा अन्य का कार्य भी नहीं है। हम कहेंगे एक पर्याय से दूसरी पर्याय हुई ना, तो नहीं, क्योंकि जो स्वयं मिटने वाली है वो दूसरे पर्याय को क्या उत्पन्न करेगी? ख्याल में आई बात? तो इतनी स्वतंत्रता है प्रत्येक पर्याय की, हमें क्या देखना है कि स्वतंत्रता को ख्याल में लेना। ऐसा कहेंगे पूर्व पर्याय के व्यय से ये हुई है, तो वहाँ कहेंगे नहीं नहीं वो तो उसी समय के अपने उपादान से हुई। हुँ। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है, परंतु द्रव्य तो त्रिकाल है, तो त्रिकाल द्रव्य है, द्रव्य तो शुद्ध है, तो पर्याय उस समय ऐसी क्यों हुई? तो कहते वो अपने में स्वतंत्र, ये स्वतंत्रता ख्याल में लेने, वो उसका निषेध नहीं करना, द्रव्य से ही उत्पन्न हुई वो तो निश्चित है। चलो अपना अभी समय हो गया है, अब यही रुकेंगे हम, बोलो 2400 भगवान की।